ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी आत्माओं का, बाबा के बच्चों का महामंत्र है ना? और तीन बार की ओम शांति में भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ कौन बताते थे? दादी जानकी। दादी की स्मृति आती इस बात को लेकर, क्योंकि दादी जी का ज्ञान मनन मंथन वैरायटी प्रकार से, एक एक शब्दों के कई कई अर्थ, कई कई राज रहस्य दादी बताती थी। और दादी जी का, जब दादी आती थी तो विदेशियों का मुरली के बाद में हमेशा आधा घंटा क्लास होता था, तुरंत में मुरली पर दादी जी अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। तो हर समय जिससे भी मिलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कोई भी कर्म करते हुए ओम शांति महामंत्र में सबसे पहले स्वयं को स्थित करना होता है कि मैं आत्मा अपने स्वधर्म में भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूं, है ना? जब तक स्वयं का भान पक्का नहीं हो जाता है, तब तक फिर क्या होगा, ज्ञान की बातें भी भक्ति की तरह से सुनते रहेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल में, अमल में नहीं आती है। क्योंकि हम मुरली रोजाना सुनते हैं और मुरली केवल सुनने की ही नहीं है, है ना? मुरली हमारी जीवन बनाने वाली है, श्रेष्ठ जीवन, लक्ष्मी नारायण का जैसा देव पद दिलाने वाली, इतना ऊंचा पद जिसके लिए कहीं पर भी कोई पढ़ाई होती हो ऐसा कभी सुना नहीं। तो इस पढ़ाई के द्वारा, इस मुरली के द्वारा हम ऐसा बनते हैं। तो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए दिव्य गुणों की चर्चा हर मुरली में होती है, धारणा की पॉइंट्स हर मुरली में होती है। तो मुरली सुनना अलग बात हो गई, रिवीजन करना अलग चीज हो गया, लेकिन मुरली की बातों को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें उसके लिए है धारणा। तो धारणा करेंगे मुरली की बातें तो सेवा भी क्या होगा, स्वतः हो जाएगी। सेवा में भागदौड़ या मेहनत की आवश्यकता नहीं रहेगी, सेवा अपने आप हो जाती है जब मुरली की बातों को हम धारण करते हैं। तो बाबा अनेक प्रकार के मुरली में बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, फरमान देते हैं, आज्ञाएं देते हैं, कई गुह्य रहस्य मुरली में बताते हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, अनेक प्रकार की बातें हम बच्चों को मुरली के द्वारा बताते हैं। तो मुरली सुनने वाले हम स्टूडेंट, भगवान के बच्चे, जैसे आज बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह की मुरली चली, तो हम भगवान के बच्चे, ये भी कितना बड़ा नशा है कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से कोई लौकिक में देखा जाए तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको भी, जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनको टीचर का कितना सम्मान होता है ना? समय से पहले जाकर के स्कूल में पहुंचते हैं और प्रार्थना होती है तो उसमें भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रार्थना हो रही है बीच में जा रहे हैं, उनको फिर अच्छा स्टूडेंट नहीं समझा जाता है ना? और उनको वहां पर तो सजा का प्रावधान भी होता है कि एक तरफ खड़ा कर देते हैं, पुराने समय में तो मुर्गा बना देते थे, कई प्रकार की बातें थी, अभी कुछ नियमों में फेरबदल भी होगा, लेकिन ऐसा था। तो प्रार्थना के समय में भी, प्रेजेंट मार्क में भी, रोजाना के लिए, तब उनको साल के अंत में, चाहे पढ़ाई उन्होंने अगर थोड़ा हल्का भी पढ़ा है तो भी उसका भी उनको इनाम मिलता है कि इसकी प्रेजेंट मार्क हमेशा के लिए रही, या इन्होंने कभी भी लेट नहीं किया तो चरित्र के नाम पर एक उनको चरित्र सर्टिफिकेट, जिसको प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो ऐसा भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ाई के टाइम में किसी प्रकार की सुस्ती आ रही है, या आलस आ रहा है, या थकान हो रही है, या बीच बीच में आंखें बंद हो रही है, तो ये भी सब इनको क्या कहेंगे, ये भी तो एक प्रकार की बुराइयां है ना, सूक्ष्म अवगुणी कहेंगे ना इनको भी, तो ये सब चीजें कमजोरियां, तो ये भी ना हो, अलर्ट और एक्टिव होकर के बैठे, है ना। देखो बाबा ने आरामदायक सीटें हम बच्चों को दी है। एक समय में, एक उदाहरण बताता हूं, हमारे लौकिक में पिताजी साकार बाबा से मिले थे, सामने मुरली सुनने का हिस्ट्री हाल में चांस मिला, तो जब बाबा की मुरली चली थी तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तो आप पट पे बैठ करके मुरली सुन रहे हो, चटाई पे बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आप सोफा सेट पे बैठ करके मुरली सुनेंगे। और उस टाइम सोफा सेट नाम लेना माना एक कितनी बड़ी बात लगती थी, कईयों ने तो देखा ही नहीं था कि सोफा सेट क्या होता है ना, तो इस प्रकार की चीज थी। और बाबा ने कहा कि बच्चे लाउड स्पीकर से मुरली सुनेंगे, तो वो हंसते थे, बोला हम 15 बच्चे हैं बाबा के सामने और बाबा ये कब की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो है, अनुभव सुनाते हैं बाबा के साथ का। तो मैं देखता हूं कि बाबा ने कही हुई बातें किस प्रकार से साकार होती जा रही है। अब हम भट्टी में बैठे हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो हमारी दादियों ने, जिन्होंने भी भट्टी की, तो भट्टी में बैठने के लिए कौन सा स्थान होता है, हाँ, पट। पट के ऊपर बैठ करके, पट पर बैठकर और एकदम अपना आसन लगाकर सहज मुद्रा में, जो भी बाबा ने हठयोग भी नहीं सिखाया है, तो उस प्रकार से मुरली सुनना और भट्टी करना कि उसमें किसी प्रकार का सुस्ती का चांस नहीं। तो क्या है, आरामदायक सोफा है, बाबा अपने बच्चों को आराम से ही बिठाता है, लेकिन उसको हमें ध्यान से यूज करना है ना। तो जितना अलर्ट एक्टिव रहेंगे तो मुरली की बात हमारे दिमाग में बैठेगी, अंदर तक जाएगी, वरना फिर क्या होता है, बाबा कहते मुरली सुनी, बाहर गए और मुरली की पॉइंट्स कहां खिसक जाती है। कभी कभी 3 पेज का पत्र, जैसे आज बाबा ने कहा 3 पेज का लेटर, परमात्मा का प्यार भरा पत्र, इसको लव लेटर कहो या आप कुछ भी कह लो, तो ऐसा 3 पेज का पत्र जिसमें अनेक प्रकार की बातें, बाबा शिक्षा सावधानियां और दिव्य गुणों की धारणा करने के लिए अनेक प्रकार की वैल्यूज की बातें हमें बता देते हैं, तो कितना हमारे माइंड में रहती है। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट समय पर पहुंचकर, जैसे कि हमारी क्लास लगती है 6:30 बजे को, आधा घंटा योग होता है पहले, तो योग में पहुंचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योग से क्या होगा, हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन होगी। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रुकता है, तो बुद्धि स्वच्छ बनेगी योग के द्वारा। तो योग को अटेंड करना, योग में बैठना, साइलेंस में अपने मन को दिशा देना अच्छी, ऊंचे उमंग उत्साह के स्वमान में रहकर और साइलेंस में बैठना, तो एकदम शांत मुद्रा में आत्मा स्थित हो जाएगी। तो उसके बाद में जो भी ज्ञान रत्न उसको दिए जाएंगे तो वो बातें याद रहेगी। नहीं तो क्या होता है, जैसे बताते हैं ना, पानी में अगर मुंह देखना हो तो क्या होता है, जब उसमें तरंगे आती है और हलचल रहती है तो दिखाई पड़ता है कुछ नहीं, तो अंदर तक देख सकते हैं, जब पानी स्थिर है तो हम क्या करते हैं, उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से स्थिरता जब होगी तो शेरणी का दूध सोने के बर्तन में, तो बुद्धि सोने की स्वच्छ बन जाएगी और उस बुद्धि में बाबा के ज्ञान के रत्न किस प्रकार के हैं, एक एक रत्न लाखों रुपयों का, इतनी कीमत समझ करके। कभी कभी बाबा कहते कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो। अब बड़ा बिजनेसमैन होता है तो किस प्रकार से अपने बिजनेस के लिए ध्यान रखता है ना, वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसके अंदर में हमेशा बिजनेस बढ़ाने की ही बात चलती रहती है। कभी भी देखेंगे मनन चिंतन ऑटोमेटिकली चलता रहता है कि कैसे ज्यादा कमाई करो, तो इस पढ़ाई से कितनी कमाई है, इस मुरली के द्वारा वो हमें खजाने मिलते हैं। तो लाख लाख का एक एक रत्न, अगर एक भी रत्न मिस हो जाता है तो कितनी बड़ी बात हो गई, साधारण नहीं गया हो। बाबा समय की भी कीमत बताते कि एक एक सेकंड हमारा कीमती है, बहुत कीमती है, क्योंकि हम ब्राह्मण चोटी हैं और संगम युग का एक एक समय बहुत ही, कई बार बाबा कहते एक सेकंड भी, एक मिनट भी एक वर्ष के समान। तो इतना संगम युग की समय की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसी युग में हम चारों युगों की, सभी प्रकार की, अंत तक, कलयुग के अंत तक की कमाई करने का अभी का समय है। इसी से हम 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करते हैं। तो ऐसा समय संगम युग का, तो समय को थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना। और भट्टी में क्या विशेष ध्यान रखना है कि आपस में लेन देन अगर किसी प्रकार का करना है तो क्या करना है, मुरली की बातों का। बाहर जाएंगे, नाश्ता पानी करते हैं, आपस में थोड़ी सी बातचीत शुरू होती है, किसी को कोई घर का फोन आ गया, दफ्तर का फोन आ गया, तो क्या होता है वहां पर, उन बातों में मन बुद्धि चला जाता है। और बाबा कहते मन बुद्धि अगर यहां बैठे हुए बाहर में जाता है तो ये भी क्या कहेंगे, कमजोरी। तो मन बुद्धि बाहर न जाए, स्वराज्य अधिकारी बनकर, राजा बनकर, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर, और फिर हम एकाग्र चित्त होकर बैठें और मुरली भी सुने और योग भी इस प्रकार से करें, है ना, तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा ने जिस प्रकार से योग की अवस्थाएं बताई कि योग में भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। मुरली की शुरुआत हुई उमंग उत्साह को लेकर, कि उमंग उत्साह की बातें है ना, उमंग उत्साह, बाबा ने क्या बोला, उमंग उत्साह क्या है, उड़ती कला के पंख है, आपको जिनको आता है तो उत्तर भी दें। उमंग उत्साह से उड़ना है, तो उड़ती कला में जाने के लिए क्या करना है, उमंग और उत्साह। जैसे किसी को पंख न हो, अगर पंछी उड़ता है तो किसके सहारे उड़ता है, पंखों के सहारे, तो हमारे पंख आत्मा को उड़ने के लिए उमंग और उत्साह, ये आधार है, ब्राह्मण जीवन का आधार है उमंग और उत्साह। तो बाबा ने दो प्रकार के बच्चों की बात बताई कि नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी। यूं तो हम सभी पुराने बच्चे हैं, लेकिन नए बच्चे भी बाबा के हैं, तो उनके मन में भी क्या जिज्ञासा रहती है, क्या उनकी इच्छा रहती है नए बच्चों की, बोलो, बाप समान बनने की। वो भी चाहते हैं कि हम बाप समान बने, और पुराने बच्चे क्या चाहते हैं कि बाबा से जो ज्ञान लिया हमने तो बाबा की बातों का हम रिटर्न कैसे दें, सेवा जो ली है बाबा से तो उसका रिटर्न कैसे पूरा करें, तो वो इच्छा पुराने बच्चों की रहती है। पुरुषार्थ सभी करते हैं, और बाबा ने कहा कि प्यार में सब कुछ आसान हो जाता है। सभी बच्चों का भगवान से प्यार किस प्रकार का है, प्यार में सभी पास है, बाबा कहते है ना, तो प्यार सभी का है, और प्यार में हर बात सहज भी हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा कि कभी कभी चलते चलते कमजोरी आ जाती है, थकान हो जाती है, उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो वापस उमंग उत्साह में आने के लिए बाबा ने क्या कहा, परमात्मा प्यार वो वापस उमंग उत्साह में ला देता है। फिर बाबा ने और बातें जैसे कि बताई कि कोई भी, जहां पर बाबा ने एक उदाहरण दिया कि कोई जानवर आते हैं या वो होता है किसी भी प्रकार की कमजोरी, तो किस प्रकार से आती है। और एक बाबा ने कहा कि कमजोर होने पर क्या होता है, उसको एक ग्लास पानी का उठाना भी कैसा लगता है, मुश्किल लगता है। और जहां उमंग उत्साह है, जहां शक्तिशाली है व्यक्ति, तो वहां दो बकेट पानी का भी एक साथ उठा करके ले जा सकता है। तो थकान होने पर फिर क्या होता है कि ये बातें वापस, बाबा की बातें कही हुई मुरली की बातों का हम फिर से मनन चिंतन करते हैं, मुरली की बात को याद करते हैं, फिर उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि हिंसक जानवर जो होते हैं वो भी योग अग्नि, जैसे बाबा ने बताया, तो आग जलाते हैं तो क्या होता है, आग के सामने जो हिंसक जानवर होते हैं वो भी पास में नहीं आते हैं। तो आप कहां पर रहते हो, हैं? बाबा ने अनेक प्रकार की इसमें बात बताई, दिल की बात। तो दिल में कौन कौन सी चार बातें बाबा ने बताई, बोलो। याद है किसी को बाबा ने क्या कहा? दिल, अगर आप परमात्मा की दिल में है, भगवान की दिल में है, तो वहां छत्र छाया में है, माया से सेफ है, माया भी वहां पर आ नहीं सकती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बाप के प्यार में गिफ्ट भी लाते हैं तो भी वो लव के दिल के आकार का, और केक भी बनाते हैं तो भी दिल के आकार का, उसका बॉक्स भी दिल के आकार का, और रहते कहां हैं, परमात्मा की दिल तख्त पर। तो दिल तख्त पर रहने वाले, भगवान की छत्र छाया के नीचे रहने वाले, अगर कभी भी नीचे आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर माया से युद्ध होती है। वरना दिल तख्त में हमेशा ही है, जैसे बाबा कभी कहते हैं कि बच्चे लाडले बच्चे हैं, सिकी लदे बच्चे हैं, तो इनको सदा झूले में ही झूलते रहना चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं, छोटे बच्चों को झूले में झुलाते हैं, अगर नीचे पांव रखा तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। तो दे भान दे अभिमान तो इसमें न आए, इसलिए बार बार में बाबा देही अभिमानी बनाने के लिए हर मुरली में अभ्यास कराते हैं। तो जितना देही अभिमानी बनते जाते हैं उतना मुरली की पॉइंट्स हमें याद रहती है, और समय पर ही हम ये करेंगे, भाई जी आने वाले हैं। तो बाबा ने वरदान में, आज का वरदान कौन सुनाएंगे, वरदान कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव है, लेकिन कैसे, हाँ, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मोजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव, हर कर्म करना है तो बाबा ने बताई हुई युक्तियों के अनुसार करना है, ऐसे नहीं कि साधारणता में जो आया बोल दिया, जो आया कर लिया, तो बाबा ने कहा कि ये कर्म तो साधारण कर्म हो जाता है। तो बाबा हमारे से किस प्रकार की चाहना रखते हैं, उस प्रकार के कर्मों की गुह्य गति को ध्यान में रखते हुए हर कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, अहम वहम को छोड़कर सब पर रहम करो। तो रहम दिल बनना है, दिन भर में देखना है हमने कितना किसके ऊपर रहम किया, कहीं अहम और वहम में आए तो नहीं। तो ये जांच करने वाली बातें हैं, और धारणा में प्रैक्टिकल लाने वाली बातें, उनको विशेष अंडरलाइन करके बार बार स्मृति में लाएंगे, एक दूसरे से लेन देन भी मुरली का ही करेंगे। बाकी योग भट्टी में मौन का, साइलेंस का अधिक से अधिक फायदा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।